श्रीमद् भगवद गीता तारु अध्याय 3 श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानं चते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्तदेहिनम्। अनुवाद एवं तात्पर्य पर श्लोक रूपा। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 84 अध्याय के 13वें श्लोक में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्म बुद्धि कुणपेत धातु के स्वधी कलत्रादिषु भौम इज्यधि यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिचित जनेश्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो अर्जुन का जो प्रश्न था कि क्यों कोई व्यक्ति पाप करने पर तुल जाता है, जबकि कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वयं चाहता भी नहीं है, तो मानो उसको विवश किया जा रहा हो। तो भगवान इस पाप करने की वृत्ति को समझा रहे हैं कि ये काम वासना इसका मूल है। और ये जो काम वासना है किस प्रकार से एक जीव को मोहित करती है उसका विवरण आज के इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में कि ये जो काम वासना है तीन महत्वपूर्ण स्थानों पर जाकर के उन तीनों चीजों को अपने वश में करके उसके माध्यम से जीव को वश में कर लेता है। तो वर्तमान स्थिति में जो हमारी बद्ध स्थिति है, बद्ध मतलब बंधी हुई, बंधन में हम हैं। किसके बंधन में हैं हम? भगवान की माया शक्ति के बंधन में। कृष्णा भुलिया से जीव भोग वांछ करे, निकटस्थ माया तारे झपट या धरे। ये हमारी सबकी कहानी है। वर्तमान में हम सभी लोग माया के द्वारा वशीभूत हैं, उसके नियंत्रण में हैं पूरी तरीके से। तो वो नियंत्रण कैसे कार्य कर रहा है माया का, उसका विवरण यहां पर भगवान स्वयं दे रहे हैं, अपनी शक्ति के विषय में समझा रहे हैं। योनि की शक्ति है माया शक्ति, लेकिन वो क्रिया कैसे करती है उसका डिटेल, उसका विस्तार से विवरण भगवान स्वयं दे रहे हैं। किस लिए? जिससे कि जो बद्ध जीव भगवान के शरणागत होकर अभी इस माया के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं, वो इस ज्ञान का फायदा उठाकर अपने को धीरे धीरे दोबारा से इस माया से मुक्त कर पाए। तो माया से जो जीव का निकलने का जो रास्ता है उसमें प्रयास और प्रार्थना, तो वो दोनों चीज महत्वपूर्ण है। यानी कि जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज समझाते हैं कि हमारा जो दर्शन है वो ये बताता है कि जैसे एक आदमी कुएं में गिरा है और उसे निकालने के लिए बाहर से रस्सी फेंकना आवश्यक है, लेकिन मात्र रस्सी फेंके जाने से ही वो व्यक्ति नहीं बचेगा, उस व्यक्ति को उस रस्सी को पकड़ना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से बाह्य मदद और उस व्यक्ति की स्वयं के प्रयास, दोनों से अंततः वो व्यक्ति उस कुएं से बाहर निकलेगा। तो उसी प्रकार से हमें यह समझना है कि माया से मुक्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए हमारी जो बहुत छोटी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, जो मनुष्य योनि में हमें पुनः कुछ हद तक वापस मिली है, उसका सदुपयोग करके हमें प्रार्थना एवं जितना संभव है उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति के द्वारा उतना प्रयास करना पड़ेगा। और फिर हमारे प्रयास और हमारी प्रार्थना से भगवान आकर्षित होंगे, उनकी कृपा आकर्षित होगी, भगवान अपनी कृपा करने के लिए आकर्षित होंगे, और उनकी कृपा से हम और अधिक माया से छूट पाएंगे। फिर और अधिक प्रयास और अधिक प्रार्थना हम कर पाएंगे, और फिर और अधिक कृपा प्राप्त होगी और अधिक स्वतंत्रता हमको मिलेगी माया से, तो जिस अनुपात में हम प्रयास और प्रार्थना करेंगे उस अनुपात में भगवान की कृपा प्राप्त होगी, उसी अनुपात में हमारे प्रयास और प्रार्थना बढ़ते जाएंगे और इस प्रकार से उसी अनुपात में माया से हम छुटते जाएंगे और अंततः पुनः अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो जीव के लिए सर्वोत्तम संभव, सर्वोच्च संभव और एकमात्र स्वतंत्रता है माया से स्वतंत्र होना। जो संभव है तब जब जीव पूरी तरीके से भगवान के शरणागत हो जाता है, तब दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एतां तरन्तिते। जब जीव भगवान को पूर्ण शरणागत हो जाता है तब भगवान अपनी अनुकंपा से उसे माया से मुक्त कर देते हैं। तो अर्जुन भगवान की शरणागति लिए है, विनीत भाव से उन्होंने अपने को भगवान के सम्मुख एक शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया। कार्पण्य दोषो अकृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेतः। तो इस प्रकार से भगवान के सम्मुख विनम्र भाव से अपने को प्रस्तुत किए और फिर अभी भगवान उनकी मदद कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं माया से निकलने के लिए। तो भगवान की जो कृपा होती है तो अनेक प्रकार से हमको मिलती है। यहां पर भगवान की कृपा उनके शरणागत भक्तों को दिव्य ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो रही है, भगवद गीता के दिव्य ज्ञान के द्वारा। यदि विनीत भाव से हम इस दिव्य ज्ञान को सुनेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो इस माया से माया को लांग पाएंगे, जो दुर्लंघी है। तो यहां पर भगवान जो विवरण दे रहे हैं काम वासना हमें कैसे वशीभूत करती है इसको हमको समझना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और इसको सुनने से हमारे अंतःकरण में शुद्धि होती है, प्यूरिफिकेशन होता है। जो बहुत लंबे समय से हमें इंद्रिय भोग करने की लत पड़ गई है वो लत धीरे धीरे कम होती है, भगवान की सेवा करने की इच्छा पुनः जागृत होती है। तो इसलिए ये विवरण हमारे लिए सुनना बहुत जरूरी है जो भगवान बता रहे हैं। तो कृष्ण कथा का अंतिम सोपान है जो आध्यात्मिक शुद्ध आध्यात्मिक स्थल पे भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की जो अंतरंग लीलाएं होती हैं, जो वृंदावन में लीलाएं होती हैं, वो कृष्ण कथा का अंतिम सोपान है। लेकिन जब तक जीव माया के द्वारा बद्ध है, जब तक वो स्वतंत्र नहीं हुआ है, तब तक वह पूरी तरीके से और यथारूप उन आध्यात्मिक शुद्ध आध्यात्मिक लीलाओं को, भगवान की वृंदावन की गोपियों के साथ ब्रजवासियों के साथ की लीलाओं को सही रूप से समझ नहीं सकता है, उनका सही आस्वादन नहीं कर सकता है। इसीलिए ऐसे भक्त को चाहिए कि वो भगवान की इस भौतिक जगत को रचने से संबंधित लीलाओं का श्रवण ऐसे भक्तों के मुख से करें जो पूर्ण रूपेण शुद्ध हो। तो स्वतः ऐसी लीलाओं का श्रवण करके हमारे हृदय में धीरे धीरे भगवान के प्रति दिव्य प्रेम उमड़ेगा। तो यहां हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के इन अध्यायों का जो अध्ययन कर रहे हैं, इन अध्यायों में वर्णन किसका है, यहां पर वर्णन चल रहा है काम वासना कैसे हमें वशीभूत कर रही है। तो हमें ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या ये कृष्ण कथा है, ये तो काम वासना ही कथा है, ये कैसे कृष्ण कथा है। तो हमारे लिए ये अधिक महत्वपूर्ण कृष्ण कथा है, वृंदावन कृष्ण कथा से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए ये कृष्ण कथा। क्योंकि हम काम वासना के वशीभूत हैं, हम माया के अंतर्गत हैं, इसलिए हमारे लिए ये औषधि काम करेगी, भव औषधि। इसलिए हमें नियमित रूप से इनका विवरण सुनना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उच्च विषयों को सुनना ज्यादा अच्छा है, दशम स्कंध में भगवान का गोपियों के साथ जो लीला है वो ज्यादा मधुर है, उसे सुनना चाहिए। हमारे लिए ज्यादा आवश्यक है कैसे हम काम वासना से फंसे हुए हैं, माया का विवरण, तो वो भी कृष्ण कथा है। यदि माया को हम इस दृष्टि से पढ़ते हैं कि कैसे हम माया से बंधे हैं और कैसे माया से निकल करके कृष्ण भक्ति करना है, यदि इस दृष्टिकोण से माया का विवरण पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो भी कृष्ण कथा है। और यदि हम माया का विवरण माया में ग्रसित होकर सुनते हैं तो फिर वो माया। तो साधारणतः जो लोग काम वासना से प्रेरित हैं और अनेक अनेक विषय सुन रहे हैं तो वो माया है। लेकिन जब हम यहाँ उसका विवरण कृष्ण के संदर्भ में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं कि कैसे वो कृष्ण की शक्ति और कैसे हम उसके वशीभूत हैं और कैसे उससे निकलना है, तो फिर इसका प्रभाव उल्टा होता है, फिर इसका प्रभाव मायाजनिक प्रभाव नहीं होता है बल्कि भव औषधि के रूप में उसका प्रभाव होता है। इसलिए ये सुनना बहुत मंगलकारी है। इसलिए सिद्धांत बोले चित्ते ना करो आलस, कभी इसमें आलस नहीं करना चाहिए इसको पढ़ने। यहां होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, इसी को सुनने से हमारे हृदय दृढ़ रूप से कृष्ण के चरणों में आसक्त हो जाएंगे। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि ये जो काम वासना है, जो माया के द्वारा रचित माया का विशेष हथियार है काम, वो आत्मा को जो दो प्रकार के शरीर मिले हैं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर जो बना है मन बुद्धि और अहंकार का, और स्थूल जो पांच महाभूत का बना है उसमें इंद्रियों मन और बुद्धि पर आसीन हो जाते हैं काम वासना। काम वासना मतलब इस भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा, इसे काम वासना कहते हैं। यही जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे पतन का और हमें भौतिक जगत में बनाए रखने का, अनेक अनेक योनियों में फिरने का यही मूल कारण है। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, तो इसके अनेक अनेक प्रकार हैं इस काम वासना के। यहां तक कि जो वेदों में वर्णित धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं, अगर उनको भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा की तरफ अग्रसर होने के लिए एक सोपान के रूप में ना देखकर अंतिम लक्ष्य के रूप में देखा जाए तो वे भी केवल काम वासना ही है और कुछ नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो वेदों में विशेष रूप से तीन भाग हैं, कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड। कर्मकांड जिसके अंदर सकाम कर्म, ऐसे सकाम कर्म नियमित करके जिनसे उच्चतर लोकों में अधिक इंद्रिय भोग किया सकता है, तो वो भी काम वासना के अंतर्गत आते हैं। ज्ञानकांड, ज्ञानकांड जिसके अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा व्यक्त की जाती है या प्रयास किए जाते हैं, वो भी काम वासना के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वहां पर भी इच्छा क्या है, भगवान में लीन होने की इच्छा है, वो भी एक काम वासना का एक प्रकार है, उसमें भी सेवा की कोई भावना नहीं है। और उपासना कांड जिसमें देवी देवताओं की उपासना करके उनके लोकों तक पहुंचने की इच्छा है, वो भी इन्हें तकती से ही प्रेरित है, इसे वो भी काम वासना के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये काम वासना और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़ करके, ये तो जो सभ्य लोग हैं उनके जीवन में ये धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है, लेकिन जो आसुरी जीवन है उसमें तो अधर्म के ऊपर आधारित काम क्रोध इत्यादि होता है, यानी कि राक्षस या आसुरी प्रवृत्ति के लोग, उनका तो क्या कहना। तो लेकिन ये सभी के सब इंद्रिय भोग के ही नाना प्रकार है। तो जीव यानी हम सभी लोग अंततः इसी काम वासना के वजह से दुष्पूरेण अनलेन च, जो कभी पूरा नहीं होता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, इसी काम वासना के कारण नाना योनि सदा फिरे, अलग अलग योनियों में फिर रहे। इसलिए ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है काम वासना, क्योंकि काम वासना है भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा, और जब तक हमारे अंदर भौतिक जगत को भोग करने की तनिक इच्छा भी रहती है, तब तक हम भगवान की शुद्ध सेवा करने के लिए अयोग्य होते हैं। भगवान परम धाम है, परम पवित्र है, इसीलिए उनकी सेवा करने के लिए आवश्यक है कि हम भी पवित्र हों। जब तक हम अपवित्र हैं, अपवित्रता प्रारंभ होती है भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा से, पवित्रता है भगवान और हमारा जो संवैधानिक संबंध है कि जीवे व स्वरूप भव नित्य कृष्णदास, इसमें स्थापित होना ये पवित्रता है। और इसके विपरीत, इसके अलग हम भोगता हैं इस भौतिक जगत के, ये जो कामना है ये अपवित्रता है। तो जब तक हमारे अंदर काम वासना से प्रारंभ होकर अन्य सब प्रकार की जो इच्छाएं हैं उसका प्रदूषण रहता है, तब तक हम भगवान की शुद्ध सेवा करने के लिए अयोग्य हैं। तो इस प्रकार से ये जो काम वासना है ये जीव को भौतिक जगत में बांधे रखने के लिए सबसे मजबूत हथकड़ी है, या सबसे आधारभूत हथकड़ी है, रूट, जड़ है हथकड़ी। इसीलिए हम सभी को बहुत गहराई से चिंतन करना है और समझना है कि ये जो इस भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा है, यही हमारी दुश्मन। तो इस जंजीर को काटना होगा, नहीं तो यदि हम ये नहीं समझ रहे हैं और इस जंजीर को का पालन पोषण कर रहे हैं, किसी भी रूप में इस भौतिक जगत से आसक्ति को बनाए रखने का विचार अपने मन में रख रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार के रास्ते में। भक्ति परेशान भव विरक्तिर अन्यत्र स्यात्। यदि हम वास्तव में भक्ति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं तो उसका स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए कि विरक्ति होनी चाहिए। इस भौतिक जगत को में आसक्ति स्वाभाविक रूप से कम होनी चाहिए, विरक्ति क्यों कहते हैं। कुछ भी भोग करने की लालसा नहीं होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए सब, तभी हम मान सकते हैं कि हम भक्ति प्रगति कर रहे हैं। और यदि हम ये गलत या भ्रम में हैं कि हम इस भौतिक जगत में आसक्त रहते हुए भी कृष्ण भक्ति प्रगति कर पाएंगे, तो ये कोरा भ्रम है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इस भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा और भगवान की सेवा करने की इच्छा, ये दोनों साथ साथ कभी नहीं चल सकते। इसलिए श्री गुरु गोस्वामी कहते हैं कि यदि आपको परिवारजनों का जो मोह है उससे आनंद प्राप्त करने की इच्छा है, तो वो जो यमुना तट पर जो श्याम सुंदर खड़े हैं बांसुरी बजा रहे हैं, उनको जाके मत देखो, गोपियां बता रहे हैं, गोपियां का मन। तो दोनों विरोधी हैं, तो इसलिए हमें हृदय के अंदर से भौतिक जगत में किसी भी प्रकार के आसक्ति को निकालने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो ये जो काम वासना है ये किस प्रकार से जीव को पाप करने में प्रेरित करती है, तो वर्तमान स्थिति में यानी बद्ध स्थिति में जैसे ही हम माया के संपर्क में आते हैं, तो माया के द्वारा नियमों में बनाए गए नियमों में बंध जाते हैं, जिसका संचालन तीन गुणों से होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और ये तीनों गुण हर चीज को नियंत्रित करते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर को भी और स्थूल शरीर को भी। तो जो काम वासना है वो कौन से गुण से उत्पन्न होती है, रजोगुण से उत्पन्न होती है, और फिर वो बदल जाती है क्रोध में जो तमोगुण से प्रेरित होता है। इससे तीनों गुणों में अपेक्षाकृत शुद्ध कौन सा है, सत्वगुण। सत्वगुण उसी से ज्ञान आता है, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण शुद्ध नहीं है, वो भी प्रकृति की गुण के अंतर्गत ही आता है। लेकिन विशेष रूप से रजोगुण और तमोगुण जीव को बांधते हैं इस भौतिक जगत से, और यदि सत्वगुण को हम कल्टीवेट करते हैं अंततः शुद्ध सत्व तक पहुंचने के उद्देश्य से, तो वो सत्वगुण का कल्टीवेशन या अनुशीलन हमारे लिए आध्यात्मिक पथ पर सहायक होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रजोगुण और तमोगुण की, काम वासना की। तो जब हम माया के संपर्क में आते हैं तो हमें एक मन यानी सूक्ष्म शरीर दिया गया जाता है, मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार। तो यहां पर बताया है प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कैसे काम वासना इंद्रियों पर हावी हो जाती है, और इंद्रियों का जो केंद्र है वो है मन, मन पर भी हावी हो जाती है, और मन को संचालित करता है बुद्धि या मदद करता है बुद्धि डिसीजन लेने में, उस पर भी हावी हो जाती है, और बुद्धि के माध्यम से बुद्धि जो है वो आत्मा के पड़ोसन है, आत्मा की हमारी पड़ोसिन है बुद्धि। तो ये बुद्धि मन और इंद्रियों के माध्यम से ही हम इस भौतिक संसार में भोग करने के लिए प्रयासरत हैं, और इन तीनों ही स्थानों पर काम ने अपना अड्डा बना लिया है। तो इसके माध्यम से विशेषकर बुद्धि के माध्यम से वो आत्मा को प्रभावित कर रहा है। किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है कि ये जो बुद्धि है जिसके ऊपर काम वासना बैठ गई है, आत्मा को के सही अहंकार को मिथ्या अहंकार में परिवर्तित कर देता है, उसके मिथ्या अहंकार को ठोस कर देता है। तो मिथ्या अहंकार क्या है, वास्तविक आत्मा का अहंकार है कि मैं कृष्ण दास हूं, और मिथ्या अहंकार है कि मैं इस जगत का भोक्ता हूं। तो ये जो मिथ्या अहंकार है जो बुद्धि के ऊपर काम वासना की वजह से उत्पन्न हुआ है, वो जीव को हमेशा इस भौतिक जगत से बांधे रखता है। सूक्ष्म और स्थूल शरीर से बांधे रखता है, उसको बाध्य करता है इस शरीर में ही बने रहने के लिए, इस शरीर के सुखों दुखों में सुख और दुख अनुभव करने के लिए बाध्य करता है। तो इसीलिए अंततः जो हमारा ये बंधन है, कारण है हमारा ये मिथ्या अहंकार, जिसको भागवतम में भी बताया गया है, भयम द्वितीय विनिवेशितः स्यात्, कि हम अपनी को मिस आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी गलत पहचान करते हैं मिथ्या अहंकार वश, कि मैं ये शरीर या मन हूं, और इस प्रकार से हम उसके वश में आ जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी देते हैं कि कोई व्यक्ति कार में जा रहा है तो सोचता है कि ये कार का मेरे से संबंध है, ये कार मेरे संबंधित है, ये मेरी कार है, ममत्व है मेरी कार है, और वो इतना अधिक प्रगाढ़ हो जाता है कि व्यक्ति अपने को वो कार ही समझ बैठता है कि मैं ही ये कार हूं, इतना ज्यादा घनिष्ठ संबंध उनके अंदर हो जाता है। तो जब कार का नुकसान होता है तो व्यक्ति को नुकसान हुआ ऐसा प्रतीत होता है, भले उसे कुछ ना हुआ लेकिन वो ममत्व के कारण उसे ऐसा अनुभव होता है। उसी प्रकार से आत्मा जब वर्तमान स्थिति में मिथ्या अहंकारवश अपने को ये मन और शरीर माने बैठी है, तो मन और शरीर के सभी विकार उसको प्रभावित कर रहे हैं, मन और शरीर के सभी सुख और दुख आत्मा को प्रभावित कर रहे हैं, मन और शरीर की जो मन की जो इच्छाएं हैं वो आत्मा को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मिथ्या अहंकार की वजह से हम पूरी तरीके से इस मन बुद्धि और इंद्रियों के वश में आ गए मिथ्या अहंकार की वजह से। तो जब तक हम ये मिथ्या अहंकार में रहेंगे कि मैं ये शरीर हूं और इसके माध्यम से भोगता हूं, तब तक हम वो तीनों गुणों के द्वारा ये जो काम इत्यादि हैं इसके वश में रहेंगे। तो यहां पर प्रभुपाद जी भागवतम में से एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, इस प्रकार से ये बुद्धि प्रदूषित जब हो जाती है काम वासना से, अंततः जीव इच्छा करता है भोगने की, प्रारंभ में अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके जब वो तटस्थ स्थिति में था, और उस इच्छा के फलस्वरूप उसे माया पकड़ लेती है, उसे ये बुद्धि देती है, उसे मन देती है, भौतिक मन भौतिक इंद्रियां। लेकिन भौतिक बुद्धि और भौतिक मन और भौतिक इंद्रिय देने का मतलब है कि वो आत्मा को वशीभूत कर लेती है, क्योंकि ये जो मन और बुद्धि है और जो शरीर है ये तो माया के नियम के अनुसार चलने वाला है। तो इस तरीके से हम भोग करने की वृत्ति से खुद उसके वश में आ जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया गया है भागवतम में, कैसे डोबा समझाते हैं भागवतम में श्लोक के तात्पर्य में, जैसे व्यक्ति शुरू में जब जैसे मान लीजिए कॉलेज में एंटर होता है, तब तक माना कि उसे सिगरेट पीने की लत नहीं होती है, तो फिर क्या होता है कि प्रलोभन मिलता है, उसके मित्रगण उसे प्रलोभन देते हैं, अरे भाई पियो बहुत मजा है, तो ऑलरेडी उसकी इच्छा है भोग करने की, वो अपने को मानता है मैं भोगता हूं, और इस इच्छा की वजह से वो प्रलोभित होता है, भोग करने की इच्छा से प्रलोभित होता है। तो इसी प्रकार से हम अंतःकरण के अंदर भोग करने की भावना रखते हैं, इसलिए माया के प्रलोभनों से प्रलोभित होते हैं। माया काम क्या प्रलोभन देना, जैसे वो मित्रगण माया के एजेंट हैं, वो हमको प्रलोभन देते हैं, हाँ सिगरेट पियो बहुत मजा है, तो अभी वो प्रलोभन से जब हम आकर्षित हो जाते हैं तो शुरू में हम केवल उसको, हम उससे वशीभूत नहीं होते हैं सिगरेट के, तो हम सिगरेट पीते हैं प्रारंभ में तो वो हमको अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन हम इस विश्वास पे कि जब ये सब मित्र इतना आनंद ले रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ आनंद होगा ही, इस विश्वास से हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमें
माया के वश में होकर उसमें आनंद आने लगता है। ये स्वभाव है इंद्रियों का। इंद्रियों को जब उनके वश विषय के संपर्क में आती हैं तो ये माया का नियम है, तो उससे कुछ एक आनंद प्राप्त होता है, रस। तो वो रस उसको मिलता है और फिर धीरे धीरे वो रस का आस्वादन करते हुए और अधिक सिगरेट पीना शुरू करता है। तो शुरू शुरू में वो सिगरेट अपनी इच्छा से पी रहा था, एक दो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी उसको लत पड़ जाती है। अभी वो सिगरेट का गुलाम बन जाता है। पहले उसने सिगरेट को पिया, वो सिगरेट को अपनी सेविका मान करके, अपने आनंद के लिए वो मेरी सेविका है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, अंततः क्या होता है कि वो खुद उस सिगरेट का गुलाम बन जाता है। अभी सिगरेट यानी वो जो नशा है वो उसको डिक्टेट करता है, उसको निर्देश देता है और पीना ही पड़ेगा। अभी वो व्यक्ति नहीं रह सकता, अभी उसके वश के बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत को अपना सेवक मान करके उसका भोग करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है कि ये भौतिक जगत की जो ये विषय हैं माया के नियमों के द्वारा हमें अपना दास बना लेते हैं, हमें लत पड़ जाती है, एडिक्टेड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सेवक हमारा स्वामी बन जाता है। जिसे हम सेवक सोच रहे थे वो हमारा स्वामी बन जाता है, क्योंकि माया कभी हमारी सेविका नहीं हो सकती। माया सेविका है कृष्ण की। माया शक्ति, ये जो भौतिक जगत, ये हमारे भोग्य वस्तु नहीं है। तो जब हम भ्रम से जो हमारे द्वारा भोग्य वस्तु नहीं है, जिसके हम स्वामी नहीं है, उसे भोगने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होता है, अंततः हम तो कृष्ण के ही नियंत्रण में रहने वाले हैं, मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो हम कृष्ण के डायरेक्ट नियंत्रण को छोड़ करके वो भौतिक जगत का भोग करने की जब इच्छा करते हैं, परिणाम क्या होता है कि भगवान की दूसरी शक्ति, माया शक्ति के कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि वश में तो हमको रहना ही है, कृष्ण का वश छोड़ते हैं तो माया के वश में आ जाते हैं। तो ये भ्रांत धारणा कारण है कि हम भोग कर सकते हैं। इसी भ्रांत धारणा के कारण हम कृष्ण की अधिकार को छोड़ करके, उनकी सेवा को छोड़ करके माया की सेवा करने के लिए भी विवश हो जाते हैं। वर्तमान में जो हमारी स्थिति है वो ये, हम विवश हैं, हम सेवक बन गए हैं माया, बीड़ी गुलाम, सिगरेट गुलाम, काम गुलाम, इन सब के गुलाम बन गए। अभी हमारे हाथ में नहीं, बिल्कुल बंधे हुए हैं। अभी काम वासना से पाप करते हैं, ना चाहते हुए भी पाप करवाता है हमको पाप, ये काम वासना। अभी पूरे जकड़ लिए गए, जैसे एक व्यक्ति जो क्लिफ किसी ऊंचाई से समुद्र में छलांग लगाता है, अभी समुद्र में गिर गया, अभी उसके हाथ में नहीं है, अभी लहरें उसको कभी ऊंचा उठाती हैं, कभी डुबोती हैं, अभी वो हेल्पलेस कंडीशन में आ गया। जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक हेल्पलेस कंडीशन में। तो इसी प्रकार से वर्तमान में हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसे ही हेल्पलेस कंडीशन। तो ये समझना है, इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मैं हेल्पलेस कंडीशन में और ये सब तीनों गुण मुझे नचा रहे हैं और ये मेरे स्वार्थ में नहीं है, ये मेरे हित में नहीं है। क्योंकि तीनों गुणों के अंतर्गत जो भी सुख मिलता है वो सब केवल भ्रम होता है, वो कभी भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता है। चाहे वो सतोगुण का सुख हो, चाहे वो रजोगुण का सुख हो, चाहे वो तमोगुण का सुख हो, वो केवल भ्रम है, क्योंकि वो क्षणिक तीनों है, इसलिए वो मेरा वास्तविक स्वार्थ नहीं है। ये समझना चाहिए, इसीलिए कामना करनी चाहिए कि मुझे इन तीनों गुणों का सुख नहीं चाहिए, मुझे भौतिक सुख नहीं चाहिए, मुझे ये जो भोक्ता बनने का सुख है नहीं चाहिए, मुझे केवल कृष्ण का सेवा करने का सुख चाहिए, भोक्ता बनने का सुख नहीं। क्योंकि वो सुख नहीं है वास्तव में, वो भ्रम है, वो क्षणिक, इसलिए हमें संतुष्ट नहीं। तो इसीलिए ये समझते हुए हमें पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के श्रीकर चरणों में शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि माया उनकी सेविका है। तो जब हम लंबे समय तक भगवान की सेवा करने का गुरुजन के मार्गदर्शन में प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये जो हमारी भोग करने की वृत्ति है ये खत्म होगी और उसी अनुपात में कृष्ण कृपा से माया से हम छुटेंगे और पुनः भगवान की सेवा का आनंद रस पुनः प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। इस विषय में कोई प्रश्न?
भगवान से आसक्ति बढ़ती है, ऐसा होता है या आसक्ति बढ़ने से भी रहती है?
दोनों दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। भक्ति परेशान भव व्यक्ति अन्यत्र साथ, दोनों साथ साथ चलते हैं। भगवान की सेवा का आनंद और विरक्ति, ये दोनों कन्वर्स से रिलेटेड है, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, बहुत बहुत साइमल्टेनियसली। हम लोग जब भगवान की भक्ति सेवा करने के लिए पहले विधि भक्ति करते हैं, विधि भक्ति मतलब विधान के अनुसार, तो उसमें भी आनंद मिलता है, बहुत थोड़ा, केवल एक लेश मात्र। तो वो विधि भक्ति करने से अनर्थ निवृत्ति होती है, तो विरक्ति अनर्थ का निवृत्ति होती है, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो आनंद बढ़ता जाता है। तो आनंद की अनुभूति प्रारंभ से ही होती है, लेकिन बहुत लेश मात्र होती है, और जैसे जो आनंद बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो विरक्त होने की अभिलाषा है, इस भौतिक जगत की जो अभिलाषा है, वो समाप्त होती है, और जितना अधिक फिर हम वो समाप्त होती है, उतने अधिक भक्ति में हम अधिक अनुरक्त कर अधिक अच्छे से भक्ति कर पाते हैं, और जितना अधिक अच्छी भक्ति करते हैं उतना ही वो आनंद बढ़ता है, उतना ही अनुपात में ये घटता है। तो इससे इंटरलेक्टेड है।